ढवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मुनिसुवयदेशयरं पणमीय मुनिसुवयं जिनं देवं संकममणोगमिनं जहासु अम्बन्नैस्सामु। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही है, उसमें से अभी हम संक्रम अनुयोग द्वार को देखते हुए 16वीं पुस्तक के 370 पृष्ठ पर आ गए हैं। हाँ, इसमें स्थिति संक्रम का विषय चल रहा है और स्थिति संक्रम में भी भुजगार का प्रकरण है। स्थिति संक्रमण का अर्थ क्या है? कितने निषेकों में से परमाणुओं का अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह हो, कितने में से हो रहा है, उसको स्थिति संक्रमण कह रहे हैं। तो भुजगार में बढ़ता हुआ जो स्थिति संक्रम होगा उसको भुजगार कहेंगे, घटता हुआ है उसको अल्पतर कहेंगे, उतना का उतना उसको अवस्थित कहेंगे, और संक्रमण नहीं था और होने लगा उसको अवक्तव्य कहेंगे। तो संक्रमण नहीं था और होने लगा, ऐसे कौन कौन सी प्रकृति हो सकती है? कौन सी होती है वो पूछा हमने। मोनी की सभी नहीं होगी, मिथ्यात्व दूसरे तीसरे में नहीं होगा। हाँ, होगी मोनी के स्थिति संक्रम तो वहां पर भी होगा ना। जहाँ सत्व है वहाँ स्थिति संक्रमण चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? हाँ, फिर सम्यक प्रकृति की होगी। देखो यानी अनंतानुबंधी जो विसंयोजना होती है उसमें होगी। 16 कषाय में कैसे होगी? फिर से वो प्रकृति में होता है, स्थिति में नहीं। स्थिति तो एक एक की घट रही है ना, अपकर्षण हो रहा है ना सामान्य से, उदयावली में नहीं दिया जा रहा है। पेज नंबर निकालो 369। यानी नीचे आने पर, उपशम के बाद नीचे आने पर उसका होगा वक्तव्य। परंतु ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय इसमें नहीं होगा। मिथ्यात्व को नहीं लिया है, मिथ्यात्व को छोड़ा है। क्योंकि देखो मिथ्यात्व का स्थिति संक्रमण तो 11वें में प्रकृति संक्रमण है, तो उसको स्थिति, उसको भी स्थिति में गिनते हैं। हाँ, और जो उद्वेल उद्वेलित होने वाली प्रकृति उनमें भी अवक्तव्य होगा। वैसे तीर्थंकर प्रकृति बाद में जब बनती उसमें भी तो अवक्तव्य तो होगा ही होगा। अभी हम 370 पेज पर आए हैं, ये हमने अवक्तव्य देख लिया। यानी सब में देखो देखो मिथ्या तो छोड़कर मोहनीय की मिथ्या तो को छोड़कर बाकी में होता है। पेज नंबर 369 नीचे से तीसरी चौथी लाइन देखो। विशेष इतना है कि पहले में अवक्तव्य संक्रम नहीं होता है, मोहनीय भी उसमें लिया था, परंतु फिर उसमें से डिफरेंस बता रहे कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ नौ कषाय इनका अवक्तव्य संक्रम होता है। यानी अनंतानुबंधी और बारह कषाय लेने से 16 कषाय हो गए, नौ नौ कषाय हो गए और केवल सम्यक प्रकृति को छोड़ा है, ये सॉरी मिथ्यात्व को छोड़ा है। आयु में तो होता ही है अवक्तव्य, नया बंद होगा तभी चालू हो जाएगा ना वक्तव्य। और जो उद्वेलित होने वाली प्रकृति है कौन सी, देवगति द्विक नरगति द्विक आहारक वगैरह जो बंद ही नहीं था या उद्वेलित हो गई थी तो बाद में उसमें हाँ शुरू हो जाता है। तीर्थंकर भी नया बंद होगा तब उसका संक्रमण चालू हो जाएगा। उच्च गोत्र का भी उसके उद्वेल न होने वाली प्रकृति है, उसका भी अवक्तव्य हो सकता है। बाकी जो अन्य नाम कर्म की प्रकृति है निज गोत्र उसमें नहीं है। अभी आगे बढ़ते, ये तो हमने किसमें है नहीं है इतना देख लिया, अब उसका काल बता रहे। एक जीव की अपेक्षा काल का कथन करते हैं, वहां केवल कथन करते लिखा है, बीच में काल का लिखो। लास्ट टाइम हमने लिखा था हाँ एक ये जीवेण कालो लिखा है ना, एक जीव की अपेक्षा काल का कथन करते हैं। यानी वो भुजगार आदि का काल बताएंगे, लगातार भुजगार लगातार अल्पतर जैसे पांच ज्ञानावरण प्रकृतियों के भुजाकार संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात हजार समय है। इसमें तो वो हमने मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण में भी समझाया था ना, उसके संख्यात उसके भेद हो गए तो उसकी अपेक्षा से अलग अलग भेदों का अधिक बंध करके बंधने वाले में संक्रमित होते हैं और बाद में बंध करके फिर उसका अपकर्षण वगैरह भी ले सकते हैं। इसलिए उसका यानी कम स्थितियों में से पहले अपकर्षण आदि होता था, अधिक स्थितियों में से होंगे उसको भुजाकार कहे। केवल स्थिति बढ़ने को भुजाकार नहीं, कितने निषेकों का संक्रमण होता था, स्थिति संक्रमण की बात है। पहले कम में से होता था फिर अधिक फिर अधिक फिर अधिक, तो ये संख्यात हजार समय बताए। अल्पतर काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक दो छासर साकरोपम मात्र है, ऐसा क्यों कहा अश्विन भाई? सम्यक प्रकृति की नहीं, पांच ज्ञानावरण की बात है। हाँ दो छासर साग अल्पतर का लगातार चलने वाला कांड घात थोड़ी दो छासर सागर को देखो देखो समय दर्शन हो जाने के बाद स्थिति सत्व जो है उससे बढ़कर स्थिति बंध नहीं होता, तो स्थिति बंध ही ना दिखो सकता है। जैसे अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति बना गई सभी कर्मों में होता है ना, प्रायोगिक लब्धि में आने पर वो दो कांड घात होता है तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह जाती है। अब नया जो बंध होने वाला है वे चौथा गुण स्थान है, तो क्या संकलेश में ज्यादा बंध नहीं करेगा? करेगा, परंतु वो बंध ज्यादा हो या कम हो जितनी सत्ता में स्थिति पड़ी है उससे कम ही है, हीनाधिक बंध होगा। कम बंध से अधिक बंध भी हो सकता है, परंतु वो स्थिति का जो सत्व है सत्व स्थिति कहेंगे सत्व की स्थिति उससे अधिक बंद कभी नहीं होगा। यानी जब तक सम्यक्त्व है तब तक वो नया बंधने वाला जो स्थिति बंद है वो कम ही होगा, तो बंधने की अपेक्षा बंधने वाले में संक्रमित होता है उत्कर्षण के लिए, इसलिए बढ़कर तो कभी होगा नहीं। यानी उसके निषेक कभी बढ़ने वाले नहीं है, सत्ता में जो निषेक पड़े हैं वो कभी बढ़ेंगे नहीं, जो है उसमें से ही अपकर्षण होगा और प्रति समय एक एक निषेक तो गल ही रहा है। यह कांड की बात नहीं, एक एक निषेक तो गल ही रहे ना, तो अल्पतर अल्पतर ही हो रहा है, इस तरह से उसका अर्थ है। यानी सम्यक तो होने के बाद स्थिति एक एक समय से गलती ही है, कभी जितनी स्थिति पड़ी है सत्ता की उससे बढ़कर कभी बंद नहीं होगा, ये उसका कारण है। यानी सम्य दृष्टि के स्थिति सत्व से बढ़कर स्थिति बंद कभी नहीं होगा। क्या अंतर्मूर्त देखो, अल्पतर का काल जघन्य से एक समय बताया, अंतर्मूर्त की कहाँ बात करें? हाँ, दो छासठ सागर,
तो वहाँ पे एक बार आना पड़ेगा ना, सागर के बाद।
हाँ, सम्यक मिथ्या तो में आया है, परंतु फिर भी बढ़ाकर तो बंद नहीं किया उसने, जा सकता है, पर जो हमें मैक्सिमम 62 दो बार 66 मिलेगा, ऐसा ही विचार करना है ना। वो मिथ्यात्व में जा सकता है, आप कहेंगे 66 सागर रहे कोई जरूरत नहीं है, बीच में ही नीचे आ सकता है। जो आ सकता है उसकी बात करेंगे कि मैक्सिमम काल को बताने वाली बात करेंगे? पॉसिबिलिटी जहाँ है उसको सोचना है, वो नहीं आता उसकी बात कहाँ है? हर जीव थोड़े ही 66 सागर तक समय दृष्टि रहेगा, हो सकता है कि 10 साल में भी गिर जावे, उसकी बात नहीं ले, जो रहेगा उसकी बात है। उत्कृष्ट काल कैसे होता है उसको सोचना है ना। ये हो गया ना, अभी 266 सागर अवस्थित का काल जघन्य से एक समय, यानी एक समय रहा उतना ही दूसरे समय में, और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त, ये कब? क्योंकि वो तो लगातार वैसा का वैसा बंद करता रहा, अवली काल बीतने पर उतना का उतनी स्थिति रही उसकी, ये हो सकता है। और हम देखते हैं कि हमेशा तो स्थिति बंधक उतना का उतना स्थिति बंधक का काल अंतर्मूर्त तो होता ही होता है, हमने देखे थे। नव दर्शनावरण प्रकृतियों के तीन प्रकार के इस नहीं चाहिए, संक्रम का चाहिए, वो स के ऊपर रफार हुआ है, संक्रम का काल। तीन प्रकार का कौन सा लिया? बुझाकार, अल्पतर और अवस्थित। जघन्य से एक समय मात्र है, जो ऊपर भी बताया था, सबका जघन्य एक समय। उत्कर्ष से वह बुझाकार का 11 समय, वहां संख्यात हजार समय लिए थे, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान और के बहुत सारे संख्यात भेद बताए थे इसलिए। और शेष दो का ज्ञानावरण के समान है, शेष दो ने अल्पतर का है वो 266 सागर अधिक से अधिक, और अवस्थित का अधिक से अधिक अंतर्मूर्त। गुजगार के 11 समय कैसे हो गए? देखो, इनकी प्रकृतियां तो 9 है, 9 का आपस में एक एक का अधिक से बंद होकर वो हो सकता है, उसमें संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी बात, परिणाम चेंज होने से, जिसको अध्याक्षय और संक्लिष्टय भी कहते हैं, उसमें भी एक समय और बढ़ाना। सातावेदनीय असातावेदनीय और मिथ्यात्व के गुजाकार ये तो 9 प्रकृति है ना, आपस में इनका अपना बंध या अन्य प्रकृतियों का बंध होने पर वो बढ़कर उसका संक्रमण भी बढ़कर होगा, क्योंकि स्थिति बढ़ेगी, लगातार बढ़ने की बात है ना, तो लगातार एक से दूसरी स्थिति बढ़ती चली जाए इसलिए होगा। और फिर देखो, आपस में वो प्रकृति बढ़ने से होगा कि नहीं होगा? अभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया तो उसने अधिक स्थिति बांधी, तो अधिक स्थिति बांधी तो अवली के बाद उसका होगा। अपने अपनी स्थिति बांध के अवली के बाद तो हो, ऐसे भी आप एक इंद्रिय से लाते हैं तो विग्रह गति में उसका एक एक्स्ट्रा बंध कराओ, अंत कोणाकर्ण नहीं होता, एक इंद्रिय से आया हुआ हजार सागर का होगा, उसके अनुपात में होगा। फिर अपर्याप्त अवस्था में अंत कोणाकोणी करेगा, पर वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। किसी एक प्रकृति का उतना रहेगा, पर उसकी अन्य प्रकृति का बंद हो सकता है ना, नौ प्रकृति है ना, इसलिए उसमें इतने ले लिए। शेष दो का साता वेदनिया, असाता वेदनिया और मिथ्यात्व के भुजाकार संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय मात्र है, क्योंकि अध्याक्षय और संकलेक्षय की प्रधानता है। ये दो तो रीजनिंग मालूम है, क्योंकि एक ही विशिष्ट परिणाम से जो हम देखते हैं ना, तो उसका तो अंतर्मूर्त प्रमाण उतना ही उतना स्थिति बंद होता है, और बाद में उसमें जो कटौती होनी या जो कुछ होना है, परंतु परिणाम बदलने से और उसका काल समाप्त होने से ये दो तरह से उसका भुजगार हो सकता है। इनके अल्पतर और अवस्थित संक्रम के काल की प्ररूपणा ज्ञानवन के समान है। अल्पतर के लिए एक समय से लेकर 266 सागर, अवस्थित के लिए एक समय से लेकर अंतर्मूर्त 16 कषाय और 9 कषायों के भुजाकार संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 17 समय मात्र। देखो 16 कषाय है तो उसमें एक बढ़ाया नहीं थे, 17 समय हो गए। वहां 9 थे तो उसमें 2 बढ़ाए थे तो 11 हो जाएंगे। वो भी उसमें ले लेना, अध्याक्षय संकलेक्षय और अन्य अन्य प्रकृति अधिक बंधने से, क्योंकि एक ही प्रकृति अपने रूप से उसका तो अंतर्मूर्त तक बंद होगा। बाकी उसका अल्पतर और अवस्थित ज्ञानावरण के समान है। अल्पतर वो 266 सागर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के भुजाकार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। देखो इसको हम भुजाकार समझते हैं, जब सारी मिथ्या दृष्टि था तो उसका उद्वेलना रूप संक्रमण तो चल ही रहा था। अब वो समय दृष्टि हुआ, तो समय दृष्टि हुआ तो जो मिथ्यात्व तो है वो समय प्रकृति समय मिथ्यात्व तो रूप से संक्रमित हो जाएगा। पहले समय में तो जितनी उसकी स्थिति थी उतनी वहां रहेगी, यानी एक समय वहां कम हो गया मान लेते हैं, और दूसरे समय में वो बढ़कर हो सकता है, अदरवाइज वो तो अल्पतर ही होता चला जाएगा। फिर से अभी मिथ्यात्व की स्थिति बढ़ने वाली तो है ही नहीं है, जितने मिथ्यात्व की स्थिति उतनी ही सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति बनने वाली है। उसके बाद क्या होगा लगातार, वो तो घटते ही चला जाएगा। सम्यक प्रकृति की बात है, हाँ, उसकी स्थिति एक एक समय से घटेगी। यही कह रहे हैं कि अवक्तव्य तो एक समय समझ सकते हैं, भुजगार और अवस्थित भी एक समय लिया, और अल्पतर में तो अंतर्मूर्त से लेकर 266 सागर रूप मात्र ले सकते हैं। एक समय अभी अभी पढ़ा ना हमने, कहाँ लिखा ज्ञानावरण के समान, फिर से पढ़ते नीचे से तीसरी लाइन, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजाकार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम का काल जघन्य उत्कर्ष से एक समय मात्र है। अवस्थित तो तभी हो सकता है कि जितनी मिथ्यात्व में से हो जाएंगे, तो मिथ्यात्व की स्थिति एक समय से बढ़कर थी और इस तरह से कुछ था वो। अल्पतर का तो एक जघन्य से अंतर्मूर्त है, अल्पतर का जघन्य से अंतर्मूर्त है, अन्यत्र अल्पतर का एक समय लिया था, यहाँ अल्पतर का अंतर्मूर्त लिया। मिनिमम अल्पतर का अंतर्मुहूर्त लिया। अंतर्मुहूर्त कैसे होगा बोलो?
हाँ,
तो क्या हुआ, मिथ्यात्व में जाने पर भी संक्रमण तो चल रहा है। हाँ, अल्पतर हाँ मिथ्यात्व में चला गया, फिर वो भुजागार हो गया। भुजागार कैसे हुआ? वो बांधी तो उसमें चली जाएगी। स्थिति तो घटेगी ना, मिथ्यात्व में जाने पर भी सम्यक प्रकृति की स्थिति तो घटेगी। सम्यक दृष्टि था तो सम्यक प्रकृति की स्थिति घट रही थी, मिथ्यात्व में गया तो भी सम्यक प्रकृति की स्थिति तो घट ही रही, वो तो नया तो तैयार होगा नहीं। क्या
क्या
किसकी? समय प्रकृति की
उपशमना
की तो संक्रमण रुकता नहीं है। स्थिति तो स्थिति संक्रमण की बात चल रही है। देखो अल्पतर कब है, समय दृष्टि है तो एक एक निषेक कम हो रहा है, तो उसका अपकर्षण भी कम उसमें हो रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ, मान लेते हैं उपशमन समय जो कुछ है, तो अंतर अभी श्रेणी की बात छोड़ो, अंतर्मूर्त तक उसने तो घटाया, अब मिथ्यात्व में आया, वो अंतर्मूर्त चालू ही रखना, बड़ा अंतर्मूर्त लेंगे तो मिथ्यात्व में भी उसका संक्रमण उल्टा संक्रमण चल रहा है, वो भी एक एक निषेक तो गल ही रहा है उसका, वो भी अल्पतर हुआ। फिर मिथ्यात्व की अधिक स्थिति जो नेचुरली मिथ्यात्व की तो अधिक थी वो फिर समय दृष्टि हुआ, अभी वेदक समय दृष्टि होगा, तो अधिक स्थिति के साथ बिना कांडक किए भी उसने समय तो प्राप्त किया समझते हैं, या कांडक करने के बाद भी अगर करता है तो भी अभी उसकी स्थिति बढ़ी तो भुजगार हो जाएगा उसका। यानी ये सब मिलकर सम्यक्तव का काल और मिथ्यात्व का काल दोनों मिलकर अंतर्मूर्त बाद फिर उसने सम्यक्तव प्राप्त किया तो उसका भुजगार हुआ, तो अल्पतर का अंतर्मूर्त हो सकता है। अरे श्रेणी क्यों चढ़ाते, शपक श्रेणी सम्यक प्रकृति के साथ चढ़ेगा, पर श्रेणी के नाम लेने का जरूरत ही क्या है, उसने दर्शन होने की सपना की करते इतना तो इनफ है ना, क्यों होगा? उसका काल इतना छोटा नहीं होगा, यानी ये पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी है कि उन्हें औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि वेदक सम्य दृष्टि तो वही करता है जिसकी सत्ता में वो था, तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया क्योंकि सम्यक प्रकृति सत्ता में नहीं थी, ऐसे जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया और फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो फिर वेदक समय दृष्टि हुआ, वेदक समय दृष्टि हुआ फिर अनंतानुबंधी की विसर्जना की, बाद में उसने दर्शन मुख की क्षपणा की। तो ये भी हो सकता है कि जो पहले अल्पतर कर रहा था इतना ही था, पहले वो शादी था कि नहीं था उसकी बात नहीं है, अल्पतर कर रहा था वेदक सम्यक तो में अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में आया और फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व से फिर दोबारा करने का काल अत्यंत छोटा हो सकता है, हमने देखा था वो क्षुद्र भव से भी छोटा काल है, तो उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि औपशमिक में से वेदक करके फिर विसंजना करके फिर सपना करने का काल शायद बड़ा हो सकता है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। देखो चार आयु कर्मों के अवस्थित और भुजाकार संक्रमों का काल। जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। आयु कर्म का अवस्थित कब होगा? बनते समय, जैसे आबाधा को गिनते हैं ना, उसमें तो निषेक तो उतने के उतने बांधे उसने दो समय तक। आबाधा एक समय घट गई और उसने एक समय बढ़कर बांधा, इस तरह से हो सकता है। एक समय बढ़कर स्थिति बांधी। अवस्थित में और भुजाकार में दोनों में वही लेना। देखो, पूर्व बंध से एक समय अधिक बांधे गए आयु कर्म का जो स्थिति अपेक्षा यहाँ जो स्थिति संक्रम ग्रहण करना चाहिए, यानी आबाधा का एक समय कम हुआ और वहां निषेक में एक समय अधिक बांधा, तो जो स्थिति उतनी की उतनी रही। देवायु और नारकायु के अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त। बंध में ही होगा। उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है, क्योंकि 33 सागर की तो आयु बांधी है और बंधने के बाद उसमें वो तो अपकर्षण होता रहता है, उसको लेना। तीर्यंच आयु और मनुष्यायु के अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, ये बनते समय लेना है। और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्योपम मात्र है। हाँ, सब नाम प्रकृतियों के संक्रम काल की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। यहाँ पर संख्या हजार समय क्यों ली फिर? जरा बोलो, जोर से बोलो। होता रहता है, आवाज आ रही थी। भुजाकार होगी ना, अल्पतर के लिए तो 266 सागर तो सभी कर्मों में वह घटित हो जाता है आयु बिना। आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात और तीर्थंकर, इनके भुजाकार संक्रम और अवस्थित संक्रम नहीं होते। इनका बढ़कर कभी बंध नहीं होगा। इस सातवें और आठवें में बंधने वाली है ना, कौन सी? आहारक शरीर वगैरह। तीर्थंकर तो चौथे से बनती है, परंतु सत्ता इनकी हाँ है, उससे कम ही बंधेगी ना। यानी सत्ता का पूरा सत्व लेना, सत्व स्थिति। हाँ, जैसे हमने वहां सम्य दृष्टि के लिया था, लगातार वो तो अल्पतर ही होता रहता है, इसलिए सम्य दृष्टि के ही बनती है, इसलिए लगातार अल्पतर होगा। तीर्थंकर प्रकृति के अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से संख्यात हजार वर्ष। कल ये बात आई थी ना, वो उत्कर्ष से पल्ले का संख्या तो अब जघन्य से नहीं। 266 कहाँ लिखा है? कहाँ बताया है? ज्ञानावरण का नाम ही नहीं लिया है। वो पर नाम पर प्रकृति में आहार शरीर के अलग से प्ररूपणा कर रहे हैं। देखो, एक तो समय दृष्टि के ही बनती है, तो सत्व तो घटता ही चला जाएगा, सत्व से बढ़कर बंद नहीं होगा। अंत कोड़ाकुड़ी का सत्व है और उससे भी छोटा संख्यात्वे भाग अंत कोड़ाकुड़ी का बंद होगा। इनका कभी सत्ता बढ़ेगी नहीं, एक बात, इसलिए भुजगार कभी नहीं होगा। अभी कितना पढ़ा आपने? पढ़ा ही नहीं ना, इसके पहले आप गड़बड़ी कर रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनो। क्या नहीं होता उतने बताया, अल्पतर कितना है वो बताएंगे। अभी तीर्थंकर प्रकृति के, पहले तीर्थंकर की बात करें, अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से संख्या 1000 वर्ष, यानी तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद मिनिमम संख्या 1000 वर्षों में वो तो मोक्ष होगा उसका। और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम मात्र है, यानी वो सर्वासिद्धि में जाने वाले की अपेक्षा बात है। आहारक चतुष्क के ये अभी आया, अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी वो आहारक चतुष्क बांधा समझते हैं, श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला गया। अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र, ये यहाँ आया आपका प्रश्न का उत्तर। ये जघन्य नहीं, ये उत्कृष्ट काल है उसका।
तो ये पल्ले का असंख्यातवा भाग ही लेना पड़ेगा
क्या?
ये अल्पतर का काल यहाँ पे भी
वो मैक्सिमम, यानी उतने काल के बाद उसकी उद्वेलना होगी। कल ही बात ये आई थी अपनी, तीर्थंकर प्रकृति 33 सागर तक टिकी, ऐसे आहार शरीर अंगोपांग इतने काल तक नहीं रहेगा। ऐसा लगता है। दूसरा उसका उत्तर क्या है, कल ही इसकी चर्चा की थी हमने। यानी अन्य प्रकृति मिथ्या दृष्टि के उद्वेलना होती वो बराबर है, परंतु इतने लंबे काल तक नहीं बंधी है तो हो सकता है उसकी जो कल भी बात आई थी ना पल्ले के, किस में आई थी वो, ओग में आया था ना। क्या अल्पभूत में आई थी? नहीं, वो तो कितनी स्थितियों में से होता है। इसमें आई थी क्या, प्रकृति में आई थी, स्थिति में 359। देखो देखो पेज नंबर 359 सेकंड लाइन, आहारक शरीर अंगोपांग आहारक बंधन आहारक संघात का उक्त काल। उक्त काल का अर्थ क्या है? जघन्य स्थिति के संक्रमण का, ये अजघन्य का काल है ना, अजघन्य का काल। जघन्य का काल एक समय होता है, जघन्य स्थिति के संक्रम का काल जघन्य उत्कर्ष एक समय, जब वो तो उसका जब उसकी जब नहीं 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 जब उसकी ये होनी है क्या, क्षय होना है, तब एक समय जब क्षय होने की बात है, 13वें गुणस्थान में होगा ना। जघन्य कहाँ होगा? 13वें में होगा। हाँ, और अजघन्य स्थिति के संक्रम का काल ये तो वो तो ये सब अजघन्य की बात कर रहे, वैकृत शरीर अंगोपांग वगैरह वगैरह जो है अजघन्य कितने काल तक रहेगी, तो साधिक 2000, यानी 2000 सागर के बाद एक इंद्रिय में चला जाएगा और उद्वेलना होकर नष्ट हो जाएगी। आहारक शरीर वगैरह के लिए कितना देखा, पल्योपम का असंख्यात भाव, यानी पल्योपम के असंख्य मैक्सिमम, तो बंधने के बाद देव में जाने वाले के भी वो नहीं रहेगा, ये इसका अर्थ होता है, इससे हमने देखा था। और यहाँ तो अल्पतर का काल बता ही दिया, यानी उतने में उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हाँ, 5 अंतराय प्रकृतियों के संक्रम काल की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। विशेष इतना है कि उनके भुजाकार संक्रम का काल संख्यात समय मात्र है, वहां संख्यात 1000 समय लिखा था, यहाँ संख्यात समय लिया। इसी प्रकार निज गोत्र और उच्च गोत्र के संक्रम काल की प्ररूपणा करनी चाहिए, विशेष इतना है कि उनके भुजाकार संक्रम का काल दो समय मात्र है। ये तो अध्यक्ष है और भुजाकार, यानी वो परिणाम बदलने से और ये हो जाएगा काल बदलने से। इस प्रकार एक काल प्ररूपना समाप्त हुई, यानी भुजाकार अल्पतर वगैरह का लगातार काल कितना है उसकी ये अपनी चर्चा चल रही थी। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर को काल से सिद्ध करके ले आना चाहिए, ये उन्होंने इतने में उसको पटा दिया। क्योंकि भुजाकार के अंतर के लिए बीच में अल्पतर का उत्कृष्ट 266 सागर ले सकते हैं। अल्पतर का अंतर, अंतर्मूर्त भी होगा ना, अवस्थित को भी ले सकते हैं बीच में। भुजाकार और अवस्थित को मिलकर हम अंतर्मूर्त कह सकते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का कथन किया जाता है। देखो, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नौ कषाय, तिर्यंचायु और एकेंद्री के बंध योग्य नाम प्रकृतियां, नीच गोत्र, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इनके भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक बहुत जीव नियम से है। क्योंकि एकेंद्री जो करते हो तो अनंत जीव है ना, उसमें तो नियम से है। चारित्र मुनि के अवक्तव्य संक्रामक भजनीय है। चारित्र मुनि का अवक्तव्य कब होगा? उपशम श्रेणी से उतरते समय होगा, यानी कभी कभी वो न हो ये भी बन सकते हैं। दीन आयु कर्म, एकेंद्रिय के बंध योग्य नाम प्रकृतियों, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के, भुजाकार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक भजनीय है। इंद्रिय बंधित पाओग नाम पैडिम, ऊपर क्या लिखा था? इंद्रिय बंध पाओग, इंद्रिय बंध पाओग और यहाँ इंद्रिय बंधित पाओग, कुछ अलग दोनों में, क्योंकि ये शब्द दोनों जगह लिया उन्होंने। पहले क्या देखा था उसमें? भुजाकार अपरद अवस्थित संक्रामक बहुत है, चारित्र मुख के अवक्तव्य भजनीय है, तीन आयु के वो भी भजनी अवक्तव्य तो होगा पर हर समय नहीं होगा। तिर्यक आयु का अवक्तव्य हर समय चलेगा, यानी अन्य भव में से अन्य तीन पर्याय में से तिर्यक में आने वाली जो हर समय रहेंगे। एकेंद्रिय के बंध योग्य नाम प्रकृतियां, इनके भुजाकार अवस्थित अवक्त संक्रामक भजनीय है। यहाँ तो कहते हैं भुजाकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामक बहुत है, ये बंध योग्य नहीं है, यहाँ बंधित है। बंधित पाओगे और बंधित बंध पाओगे उसमें क्या डिफरेंस किया उन्होंने? इनके अल्पतर संक्रामक बहुत जो नियम से हैं। देखो ऐसे हो सकता है ना कि एकेंद्रिय के साथ बंधने वाली एकेंद्रिय पर्याय यानी एकेंद्रिय जाति सहित बंधने वाली प्रकृतियां अलग होती है और एकेंद्रिय को बंधने वाली प्रकृति अलग होती है, इसमें कोई डिफरेंस होना चाहिए वहां पर। क्योंकि एक ही जो शब्द लिखा ना एकेंद्रिय के बंध योग्य नाम प्रकृतियां, उसमें भुजाकार अवस्थित अवक्तव्य भजनीय रहे और पहले एकेंद्रिय के नाम बंध योग्य नाम प्रकृतियां भुजाकार अल्पतर और अवस्थित बहुत है ऐसा लिया था, यानी दोनों जगह ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ में आते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं समझे? फिर से देखते हैं। देखो पहले हम पढ़ते हैं पांच ज्ञानावरण, अकेले एक प्रकृति को ले लो। पांच ज्ञानावरण बहुत बड़ी लिस्ट बताई ना उन्होंने, साता असता मिथ्या तो सुलगशा वगैरह वगैरह तिरंचाय। हाँ, और ये सब है उनके, भुजाकार भी बहुत है, अल्पतर भी बहुत है और अवस्थित भी बहुत है, क्योंकि उसका संक्रामक जीव बहुत जीव नियम से है, क्योंकि वो तो अनंत जीव तो उसमें कर ही रहे ना, भुजाकार अल्पतर अवस्थित सब कर रहे। अब यहाँ जो लिख रहे हैं वहां पर भी एकेंद्री के बंध योग्य लिया था, अब यहाँ लिख रहे हैं, अभी हम सम्यक प्रकृति की बात करते हैं, सम्यक सम्यक मिथ्या, उसके भुजाकार कभी कभी हो गए ना, अवस्थित और अवक्तव्य भजनीय है। अब यहाँ जो है इसमें कैसे लेना, भुजाकार भजनीय है, उनके अल्पतर संक्रामक बहुत जीव नियम से है, नहीं यहाँ लिखा एकेंद्रिय बंध पावगण आम पैडिनम, और वहां लिखा है एकेंद्रिय बंधित पावगण आम पैडिनम, बंद पाओगे बंधित पाओगे में क्या कुछ डिफरेंस है? तो डेफिनेटली उनका दोनों का ट्रांसलेशन एक किया है, बंधित पाओगे और बंद पाओगे में कोई तो डिफरेंस होगा ना। अभी उनका अवक्तव्य संक्रामक भजनीय बताया, तो ऐसी कौन सी होगी कि उसका अवक्तव्य संक्रामक नहीं होगा? हाँ हाँ अल्पतर नहीं लिया है, परंतु भुजाकार दोनों जगह लिखा है, अवस्थित दोनों जगह लिखा है, ऐसे ले सकते हैं क्या इसको? एक इंद्रिय के जो नहीं बनती है ऐसा लिया तो, या एक इंद्रिय में उद्वेलना करने वाले ये तो, पर उसे उद्वेलना प्रकृति ऐसे लिखना चाहिए था फिर। नहीं देखो देखो अभी जैसे है एक इंद्रिय के जो देवगति वगैरह उनके नहीं बनती है, तो देवगति के अवक्तव्य करने वाले तो भजनीय होगे ना, क्योंकि उद्वेलना की है और अभी पंचेंद्रिय में आए हैं बंधी है, तभी उसकी उद्वेलना चालू हो जाएगी। नरक गति के लिए भी वही होगा, मनुष्य गति के लिए होगा। नहीं, उसका भुजागार तो होगा नहीं, भुजागार करने के लिए भजन ही है।
पर आगे तो इसने बताया कि जो वो जीव संक्रमण बहुत जीव है, भुजागार अंतर और अवस्थित बहुत जीव है, और यहाँ पे वापस वही चीज वो भजन ही बताया।
वही तो बंदीदा और बंध पाए गए, इसमें कोई डिफरेंस है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। कैसे बताओ?
के साथ जो बनती है उसके अवस्थ में जो बच्चे के लिए देवगति और धर्मपति का बंद करते हैं, और किसी ने भी इसका बंद करके तो वो अवस्थ भी हो जाएगा।
सत्ता में पड़े हैं ना सारे कर्म, सत्ता में जब तक है तब उसके तो, जिसकी सत्ता है उसका तो चल रहा है हर समय संक्रमण, स्थिति संक्रमण की बात है। जो जो सत्ता में है उसका स्थिति संक्रमण चल रहा है। अवक्त कभी होगा, जो उद्वेलना प्रकृति है बाद में उसका अवक्त हो सकता है, सम्यक है सम्यक मिथ्या है उसका अवक्त हो सकता है। चलो, इनके अल्पतर संक्रामक बहुत जीव नियम से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 372, नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर को नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय से सिद्ध करना चाहिए। यानी वो जो जो कोई लगातार है और जो भजितव्य है उसमें अंतर हो सकता है, यहाँ अल्प बहुत्व की प्ररूपना की जाती है। पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनिया असातावेदनिया और 22 मोहनीय प्रकृतियों के भुजागार संक्रामक स्तोक है। अभी संगी पंचेंद्रिय वो बढ़कर बांधेगा ना, तब उसका भुजाकार संक्रमक होगा। इनके अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि अवस्थित अंतर्मूर्तक हो सकता है। अल्पतर संख्या संक्रामक संख्यात गुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक स्तोक है, भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि उसकी स्थिति घटाई थी ना, कब उद्वेलना करते करते स्थिति घटाई थी और जाके उसने अभी औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसकी स्थिति एकदम बढ़ जाएगी भुजाकार कर। अवक्तव्य संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, यानी सत्ता ही नहीं थी और उसने सम्यक तो प्राप्त किया। अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि बाकी जब तक समय दृष्टि है तो उसका अल्पतर होता रहेगा। अनंतानुबंधी कषायों के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, यानी विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाला जीव लेना। भुजागार संक्रामक अनंत गुणे हैं, अवस्थित संक्रामक उससे भी असंख्यात गुणे हैं, और अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं। नारकायु के अवस्थित संक्रामक स्तोक है, वो बंद के समय हो सकता है। भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, ये अंतर्मूर्त तक लेना लगातार। अवस्थित मेरे ख्याल से एक दो समय तक ही हो सकता है। अवक्तव्य संक्रामक संख्यात गुणे हैं, भुजाकार से संख्यात गुणा लिया। अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, बाकी नरक में तो लगातार अल्पतर होता रहेगा। इसी प्रकार देवायु और मनुष्यायु के कहना चाहिए। तिर्यंच आयु के अवक्तव्य संक्रामक प्रतर के असंख्यातवे भाग है। तिर्यंच आयु का अवक्तव्य कब होगा? हाँ, अन्य तीन गतियों में से तिर्यंच आयु में बांधने वाला जीव लेना, क्योंकि बनते उसका संक्रामक चालू हो जाएगा। अवस्थित संक्रामक, तिर्यंच आयु का अवस्थित सब जीवों के पल्लोफम के असंख्यात वे भाग प्रतिभाग रूप है। सब जीव लिया यानी अनंत का असंख्यात भाग। भुजागार संक्रामक सब जीवों के अंतर्मूर्त प्रतिभाग रूप है, यानी उसको अंतर्मूर्त से भाग देना। भागार छोटा हुआ ना, पहले पल्ले का असंख्यात भाग का भाग था, अब अंतर्मूल से भाग दिया। अल्पतर संक्रामक जीव, अल्पतर संक्रामक सब जीवों के असंख्यात बहुभाग मात्र है। भुजगार का तो असंख्यात भाग है और ये असंख्यात बहुभाग है, इससे तिर्यक आयु के अल्पभूत को सिद्ध करना चाहिए। अब नरक गति के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। नरक गति का अवक्तव्य कब होगा लक्ष्मी, आप विचार करना जरा। हाँ, तो कब होगा? नहीं, देखो नरक गति है, नरकायु की बात नहीं चल रही है। गति तो चारों ही गति के परमाणु पढ़े सकता ना। हाँ, नरक में बांधेगा नहीं, पर सत्ता में है ना, तभी तो उदय आ रहा है। तो उसके जो अपकर्षण उत्कर्षण, तो उत्कर्षण नहीं हो रहा परंतु हाँ, उत्वेलना के बाद जब वो बांधेगा, पंचेंद्रिय में आकर बांधेगा और फिर उसका संक्रमण चालू हो जाएगा, तो उसका अवक्तव्य होगा, वो कम है। भुजागार संक्रामक असंख्यात गुणे है, यानी अधिक बंद बढ़कर बंधने वाला। अवस्थित वो अल्पतर संक्रामक उद्वेलन काल संचितों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। उद्वेलन काल संचित यानी जब उद्वेलना काल चल रहा है तो उसमें उसका अल्पतर होता चला जाएगा। अवस्थित, अवस्थित भी अंतर्मूर्त तक हो ही सकता है ना। नरक गति का अल्पतर में ले लेना उद्वेलन काल संचितों की अपेक्षा, पर अवस्थित तो अदरवाइज भी होगा। अवस्थित को अलग ले लो ना, अवस्थित जो बंद है उसने उतना का उतना किया था तो उतना का उतना हो रहेगा वो, और अल्पतर संक्रामक उद्वेलन काल संचितों की अपेक्षा असंख्यात गुण है। इसी प्रकार देवगति नाम कर्म के संबंध में अल्पभूतव कहना चाहिए, वो भी उसके अवक्तव्य कब है, क्योंकि वो देवगति की उद्वेलना करने के बाद फिर बांधा है उसका, तब अवक्तव्य होगा। मनुष्य गति नाम कर्म के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। गुजागार संक्रामक अनंत गुणे हैं, क्योंकि एक इंद्रियों में मनुष्य गति तो बनती रहती है ना, गुजागार संक्रामक। अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, वो अंतर्मूर्तक होते हैं इसलिए उसको ले लेना। अल्पतर संक्रामक उससे असंख्यात गुणे हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के गुजाकार संक्रामक स्तोक हैं, अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं। ये मनुष्य गति में अल्पतर को संख्यात गुणे कहा, अदरवाइज हर जगह उसको संख्या असंख्यात गुणा कहा था। ऊपर क्या लिखा है? असंख्यात गुनाही है अपतर। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे तिर्यंच गति का। तिर्यंच गति में अवक्तव्य नहीं बताया है, क्योंकि तिर्यंच गति की सत्ता कब नाश हो जाएगी? नवे गुण स्थान में, तो उसके होने वाली नहीं एक क्षय होने के बाद। इसलिए उसमें वो अवक्तव्य नहीं लिया। चार अनुपूर्वी नाम कर्मों का अल्पभूत अपनी अपनी गति के समान है। अभी जो नरक गति वगैरह की बताया था वैसा औदारिक तेजस और कारमान शरीर के गुजागार संक्रामक स्तोक है। अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं। बहुत जगह ऐसा है ना, भुजागार कम है, फिर अवस्थित असंख्यात गुणे और अल्पतर संख्यात गुणे। इसी प्रकार अनादि सत्कर्मिक नाम प्रकृतियों का अल्प भूत्व है। अनादि सत्कर्मिक का अर्थ क्या है? उसका सत्ता कभी नष्ट नहीं हुई। सत्ता कब नष्ट होगी? जो उद्वेलन वाली प्रकृति है उनकी भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ बताए ना, नरक गति है, देव गति है, मनुष्य गति है वगैरह वगैरह। नीच गोत्र और पांच अंतराय प्रकृतियों का अल्पभूतव ज्ञानावरण के समान है। उसमें भी हमने देखा था भुजाकार कम है, अवस्थित असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर संख्यात गुणे हैं। यहाँ पर भी वही समझना, ये भले नाम प्रकृति ने, पर ये भी अनादि से है ना, ज्ञानावरण के समान। उच्च गोत्र का अल्पभूत्व मनुष्य गति के समान है, क्योंकि भी उद्वेलन वाली प्रकृति है। अवक्तव्य सबसे कम हो गए, फिर भुजाकार अनंत गुणे हो गए, अवस्थित असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर असंख्यात गुणे हो गए, क्योंकि उद्वेलना काल में भी वो तो लगातार अल्पतर अल्पतर होता चला जाएगा। इसलिए मनुष्य गति में और इसमें दोनों में अल्पतर को असंख्यात गुणा कहा। ये हो गया ना, अभी भुजंगार स्थिति संक्रम समाप्त हुआ। अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पद निक्षेप की प्ररूपणा, पद में क्या लेना है? भुजंगार ने वृद्धि, तो वृद्धि जो है वो उत्कृष्ट है कि जघन्य है, यानी उत्कृष्ट वृद्धि जघन्य वृद्धि, इस तरह से उसकी बात करेंगे। अल्पतर में हानि लेना है, तो उत्कृष्ट हानि जघन्य हानि। देखो पद निक्षेप की प्ररूपणा स्थिति उदीर्णा संबंधी पद निक्षेप के समान है। यानी हमने देखा ना कितनी स्थितियों में से हो रही थी, फिर बढ़कर और कितने बढ़ोतरी कितनी हो गई, या हानि में क्या होता है जब स्थिति कांड घात होता है, तो जितने निषेकों में से अल्पकर्षण हो रहा था, अब एक कांडक बड़ा हुआ तो मान लेते ना 70 कोड़ा कोड़ी में आउली कम था, इतने में से हो रहा था, फिर अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण में से होने लगा, तो इतनी उसकी हानि हुई। और कम था एक इंद्रिय में बंद कम था और बढ़कर बांधा, तो उसकी उसमें वृद्धि कहलाएगी। वृद्धि संक्रम की प्ररूपणा की जाती है। वृद्धि संक्रम का अर्थ है, अभी हमने देखा था उत्कृष्ट और जघन्य, इतना पद निक्षेप में बताया था। अब जो वृद्धि का प्रमाण कितना है, थोड़ा ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है कि असंख्यात गुणा है, क्या है, उसकी यहाँ प्ररूपणा होगी। पांच ज्ञानावरण संबंधी असंख्यात गुणहानि के संक्रामक स्तोक है, यानी असंख्यात गुणहानि करके जो संक्रमण करने वाले हैं वो कम है। असंख्यात गुणहानि कब होगी? जब सत्ता में से नष्ट हो गए, तब। जो श्रेणी में जो है असंख्यात बहुभाग का घात होता है ना, बड़े बड़े कांडक होते हैं, तभी का। संख्यात गुणहानि के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, संख्यात भाग हानि के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुण वृद्धि के संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। संख्यात गुणा वृद्धि कब होगी? जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि में जाएंगे तो संख्यात गुणा वृद्धि करके बंद करेगा तो उसमें संक्रमण भी उतना होगा। संख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक संख्यात गुणे हैं और असंख्यात भाग वृद्धि के संक्रामक अनंत गुणे हैं एक इंद्रिय में। अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। अब आते हैं पेज नंबर 374 पर। असंख्यात भाग हानि के संक्रामक संख्यात गुणे हैं, यानी वृद्धि से हानि वाले लेना ज्यादा, जिसको हम अल्पतर में ले सकते थे। इसी प्रकार से नव दर्शनावरण सातावेदनीय और असातावेदनीय के संबंध में कथन करना चाहिए। इसी प्रकार शेष कर्मों के भी संबंध में कहना चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और चार आयु कर्मों की प्ररूपणा में चार वृद्धियों और चार हानियों को कहना चाहिए। इस प्रकार स्थिति संक्रम समाप्त हुआ। बाकी में क्या लिखा था? असंख्यात गुण हानि बताया था, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि। असंख्यात गुणा हानि नहीं बताए थे, नहीं पहले बताए थे, असंख्यात गुणा हानि बताई थी, परंतु असंख्यात गुणा वृद्धि नहीं बताई थी ना। देखो देखो, यहाँ तो वृद्धि में तीन ही वृद्धि बताई थी। देखो फिर से जो हमने पढ़ा था उसको निकालो। हानि चार बताइए। देखो असंख्यात गुण हानि बताई, हानि हानि को ले लो, संख्यात गुण हानि बताई, संख्यात भाग हानि बताई। अभी वृद्धि की बात है। संख्यात गुण वृद्धि बताई, संख्यात भाग वृद्धि बताई और असंख्यात भाग वृद्धि बताई और असंख्यात भाग हानि भी बताई। असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि, संख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग हानि, यानी चार हानियां बताई थी। और वृद्धि में तीन ही वृद्धियां बताई थी, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं थी। असंख्यात गुण वृद्धि नहीं थी, ख्याल में है ना बात? हाँ यही। हाँ अभी किसमें किसमें है? नहीं, एक पहले बार उसने 10,000 वर्ष की आयु बांधी, मान लेते हैं, और बाद में सागरों की बांधी तो
10,000 वर्ष की बांधी
कहाँ भाव पलटा? अभी कहाँ, एक ही भाव में दो बार चार बार बांध सकता है ना, आठ बार बांध सकता है। क्योंकि आबाधा काल में उसका संक्रमण तो चल रहा है ना आयु में। नहीं समझे, कम आयु बांधी है और बाद में बढ़कर बांधी, तो पहले 10,000 वर्षों में से उसका अपकर्षण चल रहा था, अभी एकदम सागरों की पल्लियों की होगी। मनुष्य आयु में भी होगा ना, ये तीन पल्ले वाले जो आयु बांधता है, या पल्ले एक पल्ले भी बांधेगा तो भी डिफरेंस तो हो ही गया उसमें। अब सम्यक में घटित करो, होती ना, क्योंकि देखो उद्वेलना करते करते एक भी निषेक बाकी जाए रह जाए, और औपशमिक समय तो प्राप्त करता है। तो असंख्यात गुणा वृद्धि हो ही जाती है उसमें। ख्याल में आती बात? और संख्यात गुणा भी कहेंगे क्योंकि हमने सागर जितना हो गया या पृथक तो सागर हुआ और बाद में अंत कोटा कोटी हो गया तो वहां पर भी संख्यात गुणा तो हो ही गया। और बाकी अधिक बंद करके वेदक समय तो प्राप्त करने के वाले के भी संख्यात भाग वगैरह सभी पॉसिबल है। हाँ। अब यहां तक तो स्थिति का प्रकरण समाप्त होता है। इस प्रकार स्थिति संक्रम समाप्त हुआ। अब हास करते करते अनुभाग संक्रम चालू हो जाएगा। यह और कठिन बात लगती है ना। अनुभाग संक्रम की प्ररूपणा में पहले कर्मों के आदि स्पर्धकों का निर्देश ज्ञात कराने योग्य है। आदि स्पर्धक यानी पहला स्पर्धक, जघन्य स्पर्धक, किसी का कितना भी अनुभाग क्यों ना हो सबका मिनिमम जो है वो एक लेवल पर ही होगा, भले वो घाती हो या अघाती हो। डिफरेंस कहाँ होगा? मिनिमम में तो देशघाती लेंगे, सर्वघाती का तो मिनिमम जो है, सर्वघाती का मिनिमम वो सर्वघाती से शुरू होगा, वो कभी देशघाती रूप नहीं होगे। जैसे ज्ञानावरण में वो लता दारू वाले वो तो देशघाती में है, पर केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण में वो तो दारू का आनंद तो बहुभाग जो है ऊपर का वहां से शुरू हो जाएंगे। ख्याल में आती है बात? तब हमें देखिए अनुभाग की अपेक्षा, तो सबका जो मिनिमम वाला जो है ना आदि स्पर्धक है ना प्रथम स्पर्धक यानी जघन्य स्पर्धक, वो बता रहे चार ज्ञानावरण, ये देशघाती लेना सब, क्योंकि देशघाती में देशघाती भी है और सर्वघाती भी है, और मिनिमम वाला जो है वो तो देशघाती में पाया जाएगा। तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, इनमें सर्वघाती भी है परंतु उनके देशघाती है ना वहां से शुरू करना। नौ नौ कषाय और पांच अंतराय, ये देशघाती कर्म है। साता वेदनीय असाता वेदनीय, चार आयु, समस्त नाम प्रकृतियां, उच्च और निज गोत्र, ये कर्म प्रकृतियां अघाती है। अब वो देशघाती ली और ये अघाती ली। देशघाती में लता से शुरू हो जाता है उसका जो पहला मिनिमम वाला स्पर्धक, और अघाती में वो शुभ हो या अशुभ हो तो उसका जो है नीम कांजीर हो या यहाँ पर गुड़ खांड हो, तो गुड़ में जो मिनिमम है, नीम में जो मिनिमम है और देशघाती का जो मिनिमम है लता वाला, सब एक लेवल पर है। अब यही बता रहे इन अघातिया कर्मों के तथा पूर्वोक्त देशघाती कर्मों के आदि स्पर्धक सदृश होते हैं। आदि यानी पहला स्पर्धक, सदृश किस अपेक्षा? अविभाग प्रतिच्छेद, नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद। केवल ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, छह दर्शनावरण में पांच निद्रा और केवल दर्शनावरण आ गए, और बारह कषाय, ये सर्वघाती कर्म है। बारह कषाय में किसको छोड़ा? संज्वलन, क्योंकि संज्वलन ये कर्म देशघाती है, उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक है, तो ये सर्वघाती कर्म है। इनके आदि स्पर्धक परस्पर में सदृश है, क्योंकि दारू का जो बहुभाग जहां से शुरू हो जाता है सर्वघाती की लेवल उतना सब में होगा। अब इसमें किसको छोड़ा जो सर्वघाती है परंतु जिसको छोड़ दिया है? हम लक्ष्मी, जो सर्वघाती प्रकृति तो है उसका नाम इसमें नहीं डाला है, ऐसा कौन सा कर्म है? मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व का जो मिनिमम स्पर्धक है वो समय मिथ्यात्व के ऊपर से चालू हो जाएगा। ये अनुभाग की अपेक्षा बताना है ना, तो सबके मिनिमम जो हम देखते हैं नीचे लता वाले होते हैं, फिर दारू वाले, यहाँ पर उसमें एक भाग है वो देशघाती में चला जाता है और बहुभाग है वो सर्वघाती होता है। फिर ये अस्थि और फिर ये शैल। देखो सबका मिनिमम किसका, आघाती का भी और जो अभी हमने देशघाती अभी नाम बताए उनका सबका यहाँ से शुरू होता है। पहला स्पर्धक यहाँ से शुरू होता है। सभी सर्वघाती का एक्सेप्ट मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को बाद में बताएंगे। तो कहते ये दारू का अनंत भाग है, यहाँ से उनके स्पर्धक चालू हो जाएंगे। कौन से? केवल ज्ञानावरण है, पांच निद्रा केवल दर्शनावरण है, और जो अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, तो ये सब जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अभी सर्वघाती कर्मों के दारू समान स्पर्धक देशघाती कर्मों के आदि स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणे हैं। देखो ये सर्वघाती के दारू वाले हैं, ये नीचे के दारू वाले वो देशघाती वाले हैं। ये स्पर्धक सर्वघाती यहाँ से शुरू होते हैं और ये देशघाती का मिनिमम वाला है। क्या कहते हैं? सर्वघाती कर्मों के दारू समान स्पर्धक देशघाती कर्मों के आदि स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणे। नेचुरल इसमें कि अनंत अनंत स्पर्धक बीच में चले जाते हैं, तो इससे ही अनंत गुणा है। उससे लेकर सम्यक्त के स्पर्धक देशघाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों के साथ निरंतर जाकर दारू समान देशघाती में समाप्त होते हैं। यानी सम्यक प्रकृति के भी यहाँ से यहाँ तक है, अन्य देशघाती के समान सम्यक प्रकृति के स्पर्धक भी ऐसा है, इसके आदि स्पर्धक से लेकर यहाँ तक है। अब सम्यक मिथ्यात्व का जो मिनिमम वाला स्पर्धक यहाँ से शुरू होगा, ये नीचे जो ये सर्वघाती की जहाँ से शुरू हुई थी ना सबके आदि, वहाँ से स्टार्टिंग के कुछ जो है वो सम्यक मिथ्यात्व के होंगे, फिर ऊपर मिथ्यात्व शुरू होगा। यही कहते हैं सम्यक्त्व के उत्कृष्ट स्पर्धक की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का प्रथम स्पर्धक अनंत गुण है। अभी ये यहाँ पर नहीं, ऊपर नहीं जाए, देशघाती में कहीं पर समाप्त हो गए। सम्यक प्रकृति भले दारू में आ गए हैं परंतु ऊपर के लेवल तक नहीं जाएंगे, बीच में कहीं समाप्त, क्योंकि इससे भी ये अनंत गुण है। सम्यक प्रकृति के उत्कृष्ट स्पर्धक से सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य स्पर्धक अनंत गुण है, इतनी बात कह रहे हैं। क्योंकि वह केवल ज्ञानावरण के आदि स्पर्धक के समान है। यहाँ तक समझ में आई बात? उसके आगे सम्यक मिथ्यात्व के अनंत स्पर्धक निरंतर जाकर दारू समान स्पर्धकों के अनंत वे भाग में ही समाप्त हो जाते हैं। यानी जहाँ अन्य सब अन्य ने अकेला ये सम्यक मिथ्यात्व के ही इतने हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू हुए थे, सर्वघाती के मिनिमम से शुरू हुए थे और अनंत स्पर्धक सम्यक मिथ्यात्व के यहाँ समाप्त होते हैं, और यहाँ से जाकर फिर मिथ्यात्व की चालू हो जाएगी। उसके आगे का अनंतर स्पर्धक मिथ्यात्व का जघन्य स्पर्धक होता है। वह सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट दारू समान स्पर्धक की अपेक्षा अनंत गुणा होकर सर्वघाती चाहिए घाती ने सर्वघाती कर्मों के आदि स्पर्धकों के समान नहीं होता। क्या कहा? जहाँ तक सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धक है उसका नेक्स्ट एक स्पर्धक बढ़ा दो, वो मिथ्यात्व का हो जाएगा। यानी सम्यक मिथ्यात्व का जो मिनिमम जो है वो अन्य सर्वघाती के मिनिमम जैसा नहीं है, क्योंकि बीच में सम्यक मिथ्यात्व के आ गए ना अनंत स्पर्धक। इस प्रकार सब कर्मों के ही आदि स्पर्धकों की प्ररूपना की गई है। वो पहला पहला स्पर्धक सबका कहाँ क्या होता है उसकी बात बताई। यहाँ अर्थपद, अब अनुभाग में जो नियम है उसकी बात यहाँ कुछ बताएंगे। हो गया समय? ये कल देखेंगे। चावानी